Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Rama Rama.
Rama Rama.
Hare
Hare. Hare Hare.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Thank you.
क्योंकि भगवान गीता में कहते अहम बीज प्रदा पिता, पिता महर्षि जगतो माता धाता। भगवान भी हमारी माता है, पिता है, सब कुछ है, लेकिन हम भगवान को भूल गए हैं, अपने पिता को भूल गए हैं, जिसके कारण इस जगत में भटक रहे हैं। तो वास्तव में हमें अपने पिता का सही मायने में अंडरस्टैंडिंग करनी है या समझ रखनी है, जानना है, तो हमें माता का आश्रय लेना पड़ेगा, माँ का, क्योंकि माँ जानती है। और माँ जो कहेगी उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास, फेथ। जैसे आप नाई के पास जाते हो बाल कटवाने, फेथ है कि नहीं, ये गला नहीं काटेगा मेरा, बाल ही काटेगा, विश्वास करते हो कि ऐसे बैठते हो? हाँ, ट्रेन लिखा होता है ना, ये मुंबई टू दिल्ली है, दिल्ली टू मुंबई है, विश्वास है कि नहीं? क्या पता ड्राइवर रात में आप सो गए हो, किसी और जगह ले जाते, फेथ। तो इसलिए फेथ के साथ हम करते, इसलिए भक्ति करने का अधिकारी या क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो भक्ति या भगवान को जानने के लिए, इस विधि को स्वीकार करने के लिए, सबसे पहले व्यक्ति के पास एक निधि होनी चाहिए। निधि मीन्स धन होना चाहिए, और वो धन क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा को लेकर अप्लाई करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, फिर आप अनुभव प्राप्त करोगे। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होता है, श्रद्धावान व्यक्ति को। तो इसी प्रकार से हमें जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो हमें माँ का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो शास्त्र है, हाँ, वो हमारी माता है। शास्त्र क्या है, मदर है, माता है। और शास्त्र इस जगत के शब्द नहीं है, ये नॉर्मल किताबों के समान नहीं है। भगवत गीता है, भागवतम है, वेद है, उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, पुराण आदि है, ये भौतिक जगत के शब्द नहीं है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में बंधे ही शब्द के कारण, और मुक्त होने के लिए भी शब्द का ही आश्रय लेना पड़ेगा। छोड़ेगा कौन, शब्द ही छोड़ेगा। इस संसार में हम बंधे हैं। आप देखो सुबह से शाम तक व्यक्ति कितना आकर्षित होता है शब्द ध्वनि से, है ना, कितने नाना प्रकार की चीजें हम सुनना चाहते हैं, चर्चा करते हैं, और उसी से बंध जाता है पूरा जीवन। तो ये भौतिक जगत के बंधन का कारण शब्द ही है, और इस भौतिक जगत से शब्द हमें छुड़ा सकता है। तो इसलिए वेदांत सूत्र कहता है अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति, अनावृत्ति का अर्थ है रिपीट करो, इसको बोलते रहो, रिपीटेशन करो, एक के बाद एक सेम चीज को, अनावृत्ति शब्दात। आवृत्ति मीन्स निरंतर। तो ये जो आध्यात्मिक शब्द है उनका उच्चारण करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत से निकल सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको श्रद्धा के साथ स्वीकारना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत की जो ग्रह पुस्तकें हैं, ज्ञान आदि है, वो हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखता है। सुख आदि तो बहुत दूर, सुख तो बहुत दूर की चीज है। गीता में कृष्ण कहते हैं अशांतशः कुतः सुखम, जिसके जीवन में, मन में, हृदय में शांति निवास नहीं कर रही है, चित्त में शांति नहीं है, तो वो व्यक्ति सुख क्या प्राप्त करेगा। कृष्ण कहते अशांतशः कुतः, कहां है उसका सुख, जिसके जीवन में शांति नहीं है। इसलिए तो लोग सुख को ढूंढने रहे हैं, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं लोग, शांति मिल जाए, शांति, ओम शांति, ओम शांति का जप करके शांति नहीं आएगी। इसलिए नाना प्रकार के पीस मिशन है, पीस नहीं, पीस मिशन्स बोले हैं, शांति के आंदोलन है। तो शांति की शुरुआत कहां से होती है, हृदय में शांति लानी होगी, तभी बाकी सब जगह शांति आएगी। अभी किसी परिवार में हम कहते कि शांति आनी चाहिए, आपके सबके हृदय में क्रांति है तो शांति कैसे आएगी। और क्रांति क्या है हर एक के हृदय में, मैं इस घर का सेंटर हूं, मैं इस घर का बॉस हूं, मैं इस घर का केंद्र बिंदु हूं और सब मेरे सेवक बने रहे। पत्नी कहती है कि मैं सेंटर हूं, मैं केंद्र बिंदु हूं। पति वा कहते नहीं नहीं तुम नहीं हो, तुमसे शादी इसलिए नहीं कि मैं सेंटर हूं। बच्चों को भी वही सिखाते कि हाँ मैं सेंटर हूं। बच्चा कहता है आप नहीं मैं सेंटर हूं। हाँ बच्चा भी खिलौना लेके रोता रहता है क्या। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बच्चा भी चिल्लाता है रोता है, सबका जो केंद्र है ध्यान आदि किसके पास जाता है, बच्चे के पास जाता है। तो ये सब क्रांति है। ये क्रांति क्या है, हर एक जीव चाहे समाज में है, घर में है, परिवार आदि में, हर एक व्यक्ति अपने आप को मालिक स्वामी बॉस समझ रहा है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं उसकी भावना क्या है, अहम भोगी, मैं भोगता हूं, मैं इंजॉयर हूं। अहम भोगी बलवान सुखी, मैं बलवान हूं। तो हर एक जो व्यक्ति है उसके हृदय में ये भोग करने की क्रांति है, तो शांति बहुत दूर है। तभी सबके हृदय में ये भोग करने की तीव्र लालसा है। हर एक व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केंद्र बिंदु बनना चाहता है, तो शांति कैसे आ सकती। नहीं, पानी में आप ये फेंको, पत्थर फेंको, एक पत्थर फेंकोगे तो उसके राउंड में क्या होते हैं, सर्कल्स बनते हैं ना, राउंड में गोल 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 गोल, चाहे जितना मर्जी जाए वही उसी को राउंड में बनते हैं। लेकिन अब एक साथ पांच पत्थर फेंको तो क्या हो जाएगा, सबके जो राउंड एक दूसरे से क्लैश करेंगे। तो ये क्लेश क्यों है घर में, समाज में, परिवार आदि में, क्यों? यही है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अपने आप को केंद्र बिंदु बनाना चाह रहा है। बस इसी कारण से शास्त्र कहते हैं क्लेशद आस देह, इस शरीर ही वास्तव में क्लेश देने के लिए बनाया गया है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए नहीं, हम बने तुम बने मरने के लिए, शास्त्र कहता है बहुत कठोर। और वास्तव में बने हम मरने के लिए हैं, जीवित रहने के लिए बना है क्या हमें से कोई? आज तक देखा है कोई जीवित रहने के लिए बना है कोई ऐसी चीज जो बनी जो जीवित रहने के लिए? नहीं, हर चीज बनी है केवल 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 मरने के लिए। इसलिए शास्त्र बहुत जोर देते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन ये बहुत गंभीर जीवन है, ये ऐसा कुत्ते बिल्ली बंदर आदि के जैसे यूज करने के लिए नहीं है। और ये ऐसी चीज दे सकता है जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। भगवान ने सारे जीवों को बनाया, सारे बॉडीज बनाई, लेकिन तब तक मनुष्य ने बनाया था। कृष्ण असंतुष्ट थे, इतने सारे सब क्या है, सब बिल्ली कुत्ते बंदर पशु आदि, इनका इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो बस आहार निद्रा भाई मैथुनक्ष आदि कार्य में लगे हुए है, मग्ना है। तो भगवान ने आखिरी में ये बनाया, ये बॉडी बनाया, कौन सा? मनुष्य देह, क्योंकि ये स्पेशल है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं स्पेशल व्यक्ति हूं, अभी हमारी स्थिति क्या है हमें पता नहीं कि हम कितने स्पेशल हैं। इसलिए शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं। तो क्लेश क्यों है, शांति क्यों नहीं है, क्योंकि हम सबने अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखा है, अपने आप को केंद्र बिंदु बनाया है, केंद्र बिंदु। हाँ, और जिसके कारण शांति नाम की चीज दूर दूर है। तो जब तक शांति नहीं होगी तब तक सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख का पहला जो धरातल है, पहला जो सीढ़ी है वो शांति है। शांति अनुभव होगी, पूर्णता प्राप्त करेगा तो फिर सुख है। अभी हम सीधा सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है, लेकिन उससे पहले क्या नहीं है हमारे पास? शांति नहीं। भगवान कहते कैसे अनुभव करोगे? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, पांचवे अध्याय के आखिरी श्लोक में कृष्ण कहते हैं। इसको शांति का सूत्र कहा गया है, पीस फॉर्मूला भगवद गीता में। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान कहते हैं कि मैं ही केवल भोगता हूं, एंजॉयर वो जिसको कहते हैं, भोग करने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि हर फैमिली मेंबर सोचता है कि मैं भोगता हूं, तो इसलिए तो शांति है। भोगता राम, इसलिए तो आप भगवान को भोग लगाते, पहले क्या लगाते, जो भी आप कुकिंग करते हो किसको लगाते हो, ऑफरिंग भगवान को, क्यों, क्योंकि वो भोगता है। नहीं तो कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, मुझे क्यों नहीं पहले सर्व किया, पत्नी कहती है, बच्चा कहता है, हस्बैंड चिल्लाता है, कोई गेस्ट चिल्लाता है, तो इसलिए सर्वप्रथम किसको, कृष्ण को। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारी चीजों के वही एंजॉयर है, भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, और कृष्ण ही सारे लोकों के स्वामी है, सारे जो भी प्रॉपर्टी है, धन संपदा आदि है, उसके मालिक स्वामी प्रोपराइटर कौन है, कृष्ण। हम तो लिखते प्रोपराइटर मिस्टर दिस एंड दिस, लेकिन असली प्रोपराइटर कृष्ण है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। और तीसरी चीज क्या है कि कृष्ण ही सारे जीवों के असली मित्र है, हितेशी है, सुहृद है। शास्त्र कहते हैं इन तीन चीजों को जो व्यक्ति जानता है, अनुभव करता है, अप्लाई करता है, समझता है, वो व्यक्ति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा में जानता है, ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, जो मुझे जानता है कि मैं असली भोक्ता हूं, सबका प्रोपराइटर हूं, और मैं सारे जीवों का असली मित्र हूं, बंधु हूं, हितेशी हूं। इन तीन चीजों को जो जानता है, अनुभव करता है, वही व्यक्ति वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अभी इन तीन चीजों में कृष्ण की जगह हम लेना चाहते हैं, चाहते कि नहीं, भोक्ता मैं, प्रोपराइटर मैं, आपका, आप मेरे ऊपर पल रहे हो, है कि नहीं, भावना क्या है, मैं आपका असली हितेश हूं, मित्र हूं, तो प्रॉब्लम यही है, कैसे आएगी शांति। और अशांत कुतः सुखम, और शांति नहीं है तो सुख कहां से। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा, कष्ट सौख्य निरंतरम, कैसे सुख होगा निरंतरम, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक सारे जो लोग हैं वो पशुवत हैं, और पशु समाज में कोई शांति होती है क्या। पशु आपस में इकट्ठे आते तो क्या करते हैं, एक दूसरे को खाने में लगाते, चिल्लाते, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य का जीवन ये स्पेशल चीज है, और ये बनाया है भगवान ने स्पेशल। और क्या स्पेशलिटी है कि ये दिव्य सुख को प्राप्त कर सकता है, और ये ऐसा आनंद अनुभव कर सकता है कि ये जगत में ऐसा आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे करोड़ों करोड़ों रुपए आ जाए, हम बहुत धनवान हो जाए, बहुत सौंदर्य आ जाए, उच्च कुल में हमारे पास जन्म हो जाए, या पद पोजीशन आ जाए, नहीं, सुखी नहीं हो सकता। बिल गेट, जो वर्ल्ड का सबसे रिच व्यक्ति है, वो आप इतना धन है कि परेशान है, वो अपना दान चैरिटी करने में और समाज सेवा करने में, सब उसने चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, घूम रहा है, क्या करने में, समाज सेवा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने मनुष्य जीवन, मेरे पास स्पेशल है, इसकी जानकारी हमें हो। और जब तक ये नहीं होगी तब तक हम तो फिर आया राम गया राम, आया राम गया राम मतलब क्या कि आया, जन्म ले लिया, पशु के समान कार्य में जीवन बिता दिया, गधे कुत्ते बिल्लियां, ये शब्द बड़े कठोर है कि नहीं, सुनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम भागवत पढ़ेंगे तो हर अध्याय में यही बोला गया है। शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में लेक्चर देते थे तो वो दो शब्द बहुत ज्यादा यूज करते थे, फूल्स एंड रास्कल्स। मैं एक उनका प्रवचन पढ़ रहा था, एक प्रवचन में उन्होंने कृष्ण कम बोला है लेकिन 40 बार रास्कल बोला है। मैंने गिना कितनी बार बोला है रास्कल, और रास्कल मूर्ख। तो क्यों, तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा, स्वामी जी आप बहुत ना तीव्रता से बोलते हो, ये अच्छा नहीं लगता, क्या ये रास्कल मूर्ख कमीने, ये शब्द अच्छे है क्या। प्रभुपाद कहते, प्रभुपाद कहते मैंने बोल रही, कृष्ण ने बोला है, क्योंकि भगवान कहते ना गीता नमा दुष्कृति ना मूढ़ा, मूढ़ा किसके आए भास्कर। तो प्रभुपाद ने कहा ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो वही शब्द बोल रहा हूं जो भगवान ने बोले बस। और इसी को साधु कहते हैं। साधु का मतलब है, भक्त का मतलब है, वो अपनी कोई मिलावट प्रस्तुत नहीं करता, अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहता। वो किसको स्थापित करना चाहता है लोगों को आगे? कृष्ण। और जो साधु अपने आप को स्थापित कर रहा है वो साधु नहीं है। आजकल सो कॉल्ड जितने साधु हैं वो भगवान की बातें लेंगे, गीता भगवान की, भागवतम भगवान का, संदेश उनका, लेकिन सारे मोहल्ले में पोस्टर किसके? मेरे अपने। तो दिस ये नहीं है साधु वृत्ति, ये स्वाधु वृत्ति है ना, साधु और दूसरा है स्वाधु। तो शास्त्र ये नहीं कहते, क्योंकि भक्त या साधु का गुण है हम कृष्ण से तुमार कृष्ण देते पार, तुमार शक्तियां छे, उनके पास सामर्थ्य है कृष्ण देने का। आजकल के जो लोग हैं वो केवल यही करते हैं, क्या है वो भगवान को नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को भेज रहे घरों में लोगों के। भक्त का मतलब है भगवान को वो देता है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए या हरे कृष्ण के भक्त अब जुड़े हैं सब थोड़े बहुत, तो आपने देखा होगा ये हरे कृष्ण के भक्त कहाँ से गुजरता हुआ दिखता है या कोई गीता बांटता है तो आप कहते कि ये लोग कौन से लोग है, ये हरे कृष्ण वाले है कि नहीं। ये थोड़ी कहता है कि वो प्रभुपाद स्वामी थे ना महाराज प्रभुपाद उनके लोग है, ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं, कहते हरे कृष्ण वाले हैं। तो इसका मतलब जो श्रील प्रभुपाद थे वो आदर्श साधु है, वो सारे जीवों को कृष्ण दे रहे हैं। और जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं आएंगे, भगवत सेवा भगवत प्राप्ति आदि हम नहीं करेंगे, तब तक ये अशांति शांति और ये सुख आदि हमसे करोड़ों करोड़ों मिल क्या है दूर है, और तब तक हमारे जीवन की पूर्णता असंभव है। और हम सब लोग हैं, हर एक व्यक्ति लगा है जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए, और सारे शास्त्र इसी पर जोर देते हैं कि पूर्णता क्या है, जब तक व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बनता तब तक उसका जीवन पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अभी इस जगत में हम पूर्णता क्या है, हम सोचते भाग्यवान या पूर्णता वही है धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही, मुझे धन चाहिए, घर चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, मेट्रो ट्रेन चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, है ना, हमेशा चाहिए, मरते समय भी वो चाहिए चाहिए करते मरता है। तो शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को पूर्णता तभी संभव है उसके जीवन की, जब तक वो भगवान के सौ भगवान से 100% प्रेम करना नहीं सीखता। पूर्णता क्या है? भगवान से प्रेम करना सीखना, क्योंकि हमारा स्वभाव हम प्रेम किए बिना नहीं रह सकते, कोई रह सकता है क्या? जब हम जन्म लेते हैं थोड़े सी आंखें खुलती है या थोड़ा सा हमें स्मरण होता है तो सबसे पहले हमने माँ से प्रेम करते कि नहीं? बच्चा अपने माँ से कि आओ किसी के पास नहीं रहना चाहता, पिता के पास भी नहीं जाता, प्रेम माँ से प्रेम करता। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है देखता है कि अरे पिता रोज ऑफिस से आ रहा है, खिलौने ला रहा है, स्वीट ला रहा है, जो ला रहा है उससे प्रेम हो जाता है। माँ कहते अरे मुझसे थोड़ा अभी कम हो गए, पिता के पास भागता है, पिताजी दौड़ता है, खिलौने खाने की वस्तु है। तो उसे थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा स्कूल में जाने लगता है, अभी माँ चिल्ला रही है, पिता कह रहे अरे तुम्हारे लिए इतने खिलौने लाए, सब लाए, वो मित्रों के साथ खेलता है बाहर, है कि नहीं? आता नहीं, माँ चिल्लाती रहती बेटा आओ आओ तुम्हारे लिए मैंने खाना रखा है, कहते नहीं अभी मैं बिजी हूं। किससे प्रेम हो गया उसका? मित्रों से। तो पूर्णता नहीं है। थोड़ा बड़ा होता है तो कॉलेज जाना चाहता है, कॉलेज जाने जाता है तो मित्र भी बदलते हैं, प्रेम का स्थान क्या हो रहा है? बदल रहा है। बड़े बड़े मित्रों से प्रेम होता है वो बदल जाता है, कॉलेज के नए फ्रेंड से उनसे प्रेम करने लगता है, उनके संग हमेशा रहना चाहता है, और जब डिग्री आदि मिलती है, शादी करता है, तो फिर राम अभी सोचता है कोई युवती होनी चाहिए मेरे जीवन में, पत्नी होनी चाहिए। हाँ, तो जितना प्रेम था वो अपनी पत्नी को देता है, स्त्री को देता है, युवती को देता है, उससे प्रेम करने लगता है थोड़े दिन। अभी जब बच्चा हो जाता है वो देखता है कि अरे वो तो मुझसे प्रेम ही नहीं कर रही है। हाँ, जब बच्चा हो जाता है स्त्री को, तो वो किससे प्रेम करती है? बच्चे से। हस्बैंड से तब इतना प्रेम नहीं रहता, वो कहते कि अभी तो मेरी और इन अटेंशन है, अटेंशन नहीं है, अटेंशन कम हो जाता है। अटेंशन कौन बन जाता है? बच्चा। आया कि नहीं? रियलिटी है कि ऐसे ही है, झूठ तो नहीं ना, सच है। हाँ, तो जब बच्चा हो जाता है तो उसका प्रेम का स्थान बदलता है, वो उससे प्रेम करने लगता है, फिर पिता भी बच्चे से प्रेम करने लगता है। और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अभी हम बच्चे से शुरुआत की थी, कहां से शुरुआत की थी? बच्चे से। अभी वो बच्चा पिताजी बन गया है और वो अभी प्रेम कर रहा है अपने बच्चे से, बच्चा भी बड़ा हो जाता है, सब काम वगैरह करके वो बच्चा मैरिज आदि करके भाग भी जाता है विदेश, तब तक उससे ही प्रेम करते हैं। माँ और पिता को कितना प्रेम होता है अपने बच्चों से। शास्त्र कहते हैं माँ सबसे अधिक अपने पुत्र से प्रेम करती है और पिता सबसे अधिक अपने बेटी से प्रेम करता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में। ये स्वाभाविक है, कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटी से प्रेम नहीं रखता? तो इस प्रकार से जब शास्त्र कहते हैं तो प्रेम, अभी इसका प्रेम का जो स्थान था वो तो अमेरिका चला गया अपने पत्नी के साथ। अभी घर में तो बस पिता और दूसरा माता बस। कभी कभी तो अकेला होता है ना, पत्नी है तो अकेला होता है बेचारा। तो विदेशों में ये पाया जाता है, विदेशों में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 22-20 साल के छोड़ देते हैं पेरेंट्स को, टीनेजर, और मुंह देखते नहीं फिर से माता पिता का, अपना ही सारा अरेंजमेंट कर लेते, शादी कर लेते, सब कुछ कर लेते, सेटल हो जाते हैं। ये विदेशों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे अधिक दुखी लोग है विदेशों में। दूर से बहुत अच्छा दिखता है, चमक दमक। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम चमकीले चमक दमक से बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन नहीं, नजदीक जाओ अंदर देखो, खोखला है जीवन लोगों का। हाँ, बहुत कष्ट है उनके हृदयों में। प्रभुपाद कहा करते थे इंग्लिश में, स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हार्ट्स। मुंह में तो बड़ी हंसी है दिखाने के लिए, लेकिन हृदय में इतना दुख है, इतना कष्ट है, किसको कहो, कोई सुनने ही नहीं चाहता। बूढ़े व्यक्ति का कोई सुनता है? आप में से कोई बैठता है दिन में 2 घंटा बूढ़े व्यक्ति के पास कि हाँ बताइए, आपसे मैं सारा सुनना चाहता हूँ? नहीं, टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है विदेशों में। हमारे एक भक्त मुझे अभी 2-3 दिन पहले बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से वो आए थे, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक प्रॉब्लम है लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब है एक अकेलापन, अकेला अकेलापन, कोई है नहीं, दूर दूर तक बात करने के लिए कोई नहीं है, 8-10-20-20 घरों के अकेला रह रहा है व्यक्ति, 20-20 वहां कोई नहीं है बात करने के लिए एक दूसरे से, तो क्या करेगा, रोएगा व्यक्ति। तो जब प्रेम करने का स्थान बदल जाता है, देखा कि पुत्र बहू आदि सब चले गए विदेश, अभी अकेला है क्या करे, तो किसको रखता है? कुत्ते को। किसको रखता है? कुत्ते को। कुत्ते को रखेगा, उससे प्रेम करेगा, उसको नहलाएगा, उसको कार में घुमाएगा, हाँ उसको कपड़े पहनाएगा, उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा, क्योंकि प्रेम किए बिना हम नहीं रह सकते। विदेशों में तो कुत्ते की सेवा इतनी की जाती है, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए उन्होंने तो देखा ही तो हद हो गए। भारत में तो गाय को पाला जाता है, गाय की सेवा की जाती है कि नहीं? वहां घरों में कुत्ते एक एक नहीं, दो दो, और बड़ा अभिमान होता है। हाँ, जैसे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वहां शिवसेना जो पार्टी है उसके लीडर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वहां इतने गर्वित हो जाते, इतना अभिमान कि हमारे घर में दो दो कुत्ते हैं और किसकी सेवा कर रहे हो? कुत्ते की सेवा कर रहे हो, मतलब क्या मूर्खता है। प्रभुपाद ने कहा विदेशों में कई ऐसे स्थान है जहां लोग कुत्ते को ले जाते हैं और कुत्ते ने यदि टॉयलेट कर दी रास्ते में तो जो मालिक है उसको टॉयलेट भर के प्लास्टिक में डब्बे में डालनी पड़ती है, वह अलाउड नहीं, और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा, जेल में भी जाना पड़ेगा। तो जो मालिक लोग है सुबह सुबह कुत्ते को टहलने के लिए जाते हैं, वो प्लास्टिक का थैला भी साथ लेके चलते क्यों, कुत्ते ने दी टॉयलेट की तो भरना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ये है कि प्रेम हम करते हैं, प्रेम का स्थान निश्चित है, प्रेम ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिससे हम परमानेंटली प्रेम करें, हम ढूंढ रहे कि नहीं। लेकिन पूरे जीवन को आप यदि गंभीरता से एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो हमारा प्रेम का जो स्थान है वो बदल रहा है, बदलते जा रहा है। हाँ, क्योंकि इस संसार में प्रेम करने लायक बड़ा कठोर है आप कह सकते नहीं, हम तो इतने स्लोगन बोले हैं, आई लव यू कितनी बार उच्चारण किया होगा। हाँ, तो ये फॉल्स है शास्त्र कहते हैं। तो प्रेम करने वा तो वो व्यक्ति सोचता है, वह कुत्ते को पालता है और कुत्ते को थोड़े दो तीन बिस्किट खिलाता है रोड के किसी कुत्ते को, जब वो बहुत टेंशन से जा रहा था। तो फिर वो जाता है तो अपने घर के पास, अभी बूढ़ा हो गया था, बच्चे आदि सब चले गए थे, घर का दरवाजा खोलने वाला था, तो पीछे मुड़ के देखा, क्या अरे जिस कुत्ते को मैंने रास्ते में बिस्किट्स खिलाए थे वही कुत्ता मेरे पीछे आके खड़ा है, उससे प्रेम करने लगता है, फिर उसको पालता। तो कहते कि इसको केवल दो बिस्किट देने मात्र से इतना मेरा आज्ञाकारी हो रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, और जिनको मैंने पूरा जीवन संभाला, सारा लाइफ दे दिया, धन दे दिया, टाइम दे दिया, अपना आयु को लगाया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, वो लोग क्या है, पंछी की तरह उड़ के चलेंगे। कहता ये आज्ञाकारी है, ये प्रॉब्लम है, और फिर उसी की सेवा में लगता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, क्या सीखते हैं हम, कि मनुष्य जीवन बहुत स्पेशल है, और ये स्पेशल मिला है प्रेम करने के लिए, और ऐसे व्यक्ति को से प्रेम करने के लिए जो व्यक्ति निरंतर रह सकता है, परमानेंट। इसलिए रुक्मिणी देवी कहते कि है कृष्ण, मैं ऐसे भौतिक जगत के किसी पुरुष से कैसे प्रेम कर सकती हूँ, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, जिसका शरीर हड्डियों से भरा पड़ा है, गंध है शरीर में, मल है, मूत्र है, ये सब चीजों से भरा हुआ है, ब्लड है, और जो मरने वाला है, ऐसे कैसे व्यक्ति से क्या प्रेम करो, प्रेम करने के योग्य तो कौन है, आप, ऐसे कहती हूँ। इस प्रकार से हम शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में हम सब लोग ढूंढ रहे हैं किसी चीज को, क्योंकि सुख कब अनुभव होता है, जब आप किसी से आदान प्रदान करते हो, अकेले बैठे थोड़ी सुख अनुभव होता है क्या, हाँ कि अकेले बैठे चाहे हजारों रुपए आपके जेब में हो बहुत सुख अनुभव कर रहा हूं, नहीं, सुख अनुभव करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हैं और उससे लेन देन आदान प्रदान करते हैं अपनी भावनाओं का, सेवा का, तब हम क्या अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं। माँ भी या बच्चा भी है एक दूसरे से सुख की अनुभूति करता है, कैसे करता है, हरे कृष्ण, कैसे अनुभूति करता है, हाँ बच्चे की सेवा करके, बच्चा भी माँ से आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हम वास्तव में किसी व्यक्ति की खोज में हैं, किसी व्यक्ति से हम ऐसा प्रेम करना चाहते हैं जो प्रेम शाश्वत बना रहे, कैसे बना रहे, शाश्वत निरंतर। तो हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति न होने के कारण ही हम शांति का अनुभव नहीं कर रहे जीवन में, और जैसे मैंने शुरुआत से ही कहा कि शांति नहीं है तो सुख असंभव है, वो पशु का समाज है। तो इसलिए व्यक्ति को आश्रय लेना चाहिए शास्त्र का, किसका, शास्त्र, क्योंकि शास्त्र ये हमारे लिए मार्गदर्शक है, गाइड है, जो हमें मार्गदर्शन देता है हमारे असली पिता के पास जाने के लिए, क्योंकि पिता सर्वगुण संपन्न है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, उनके पास जाने के लिए मार्गदर्शन करता है ये शास्त्र। लेकिन हम तो बस इसी जगत में बने रहना चाहते हैं, उस इंद्र के भांति जिस इंद्र को शाप मिला था सुअर बनने का, और सुअर बना। राजा इंद्र जिसके पास अप्सराए है, अमूल्य धन आदि है, पद है, सोमरस का जो निरंतर पान करता है, हेवनली ड्रिंक जिसको कहते सोमरस, इतना सब कुछ है, उसको शाप मिला कि तुम सुअर बन जाओ। सुअर बना, आपने सुना हो सब स्टोरी, सुअर बना तो बहुत मग्न है। सुअर बना तो उसकी पत्नी भी थी, क्या थी, सुवर्णी, मिस पिग, अरे मिस्टर पिग, बिल्कुल गर्वित था। और जब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे यहाँ तो सिंहासन खाली हो गया है स्वर्ग का, इसको चलाने के लिए, ध्यान देने के लिए कोई है नहीं, मैं जाता हूँ। तो हम अपने जो गाड़ी है, ब्रह्मा का गाड़ी क्या है, हंस, हंस वाहन। अभी हमारे गाड़ियों में तो क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, पिंग पिंग करते रहो, या पेट्रोल लगाओ, कितनी चीजें हैं, दरवाजे बंद करो, वो तो बस इच्छा करने मात्र से माइंड जैसे सोचता है वैसे उनकी पुष्पक विमान ये सब चलते हैं। उनको ये सब नहीं करना पड़ता, ड्राइविंग करो, सिग्नल और इंडिकेटर दे दो, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये सब चीजें नहीं। तो जो ब्रह्मा जिनका वाहन हंस है, ऐसे हंस के ऊपर बैठकर वो आए इंद्र से मिलने के लिए, और इंद्र को कहा कि अरे इंद्र चलो चलो, कहां चलो, वापस चलो, जहां स्वर्ग में तुम्हारा स्थान खाली है, चलो मैं तुम्हें लेने आया हो। और वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वहां क्या ऐसी सुंदर, मैं कैसे आ सकता हूं इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर, आगे आ सकते आप सब, तो इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूं। कौन कह रहा है, इंद्र, कौन से रूप में है, सुअर, कैसे आ सकता हूं मैं, इतना कहते क्या ऐसी सुंदर पत्नी होगी स्वर्ग में, और ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो तोतली बोले बोलते रहते पापा मम्मी आदि, ये बच्चे भी होंगे, नहीं, इससे अच्छा आनंद कहाँ है। क्या कह रहा है सुवर, इससे बढ़कर आनंद कहाँ है, मेरे कान हर समय लालायित रहते हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की वाणी सुनने के लिए, और वास्तव में यही तो सुख है। भौतिक जगत में सुख किसमें हम अनुभव करते हैं, तोतली बोले जो बच्चे बोलने लगते हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन कोई छोटा बच्चा है घर में और थोड़ा सा पप्पा भी नहीं बोल रहा, कुछ बोलना शुरू कर दे टूटा फूटा शब्द, तो इनका पूरा पूरे फेसबुक में आ जाता है या फिर सब जगह अनाउंसमेंट हो जाती है, फोन में सुनाते देखो बच्चा बोलना शुरू कर दिया, ये तो आनंद है शास्त्र कहते हैं गृहस्थ लाइफ में। लेकिन जब इंद्र को कहा चलो चलो स्वर्ग में, स्वर बना था तो कहता है कि इतनी सुंदर पत्नी बच्चे आदि ये सब हो गए क्या। ब्रह्मा कहते हैं अरे मूर्ख, वहां तो अप्सर आए हैं, ये जगत के जो सुंदरिया है ना, विश्व सुंदरी जिसको कहते हैं, आप टेलीविजन में देखते हैं वर्ल्ड क्या कहते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, हाँ ये सब यहाँ का सौंदर्य स्वर्ग की अप्सरा के सौंदर्य से घृणित है, निकृष्ट है। यहाँ का सौंदर्य मेंढक के सौंदर्य के समान है, वहां के सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वहां सब कुछ है, फिर भी ये नहीं जाना चाह रहा था, मग्न हो गया था। उसी प्रकार से हम मग्न रहना चाहते हैं, यहाँ ही बने रहना चाहते हैं, सड़ना चाहते हैं, लेकिन शाश्वत सुख जो भगवान के चरणों में है वो प्राप्त नहीं करना चाहते। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम छोटे से अशाश्वत सुख के लिए पागल हो गए हैं, बल्कि ये सुख हमें दुख ही देने वाला है इस संसार में, इस जगत में। तो ऐसे इंद्र वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसने देखा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका बहुत आकर्षण पत्नी और बच्चों से है। तो इंद्र ने अपना छड़ी उठाया, नहीं ब्रह्मा ने पहले जो सुअर इन पत्नी थी उसको मारा, मारते मर गए। इंद्र जो अभी सुअर था पूरा क्रोध होकर आ रहा था, बच्चों को भी मार दिया, सबको मारा और उसको इंद्र को ले गए। तो उसको आया कि अरे अरे मेरी क्या दयनीय स्थिति थी, क्योंकि व्यक्ति जब तक उस स्थिति से ऊपर नहीं उठा हो तो वो देख नहीं सकता कि नीचे कितना गंदगी है, कितना घृणित जीवन है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमें शास्त्रों के चक्षु से देखना चाहिए। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, शास्त्र कहते हैं कोई व्यक्ति देखता है, आध्यात्मिक व्यक्ति, वो अपनी चमड़ी की आंखों से नहीं देखता। कौन सी आंखों से देखता है? ज्ञान की आंखों से, शास्त्रों की आंखों से, शास्त्रों की नजरिया से देखता है ये जगत को। तो इसलिए इस पर जोर दिया गया है कि हमें शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। क्या है शास्त्र? भगवान की वाणी। शास्त्र ऐसे किसी ने लिखे नहीं है, शास्त्र जो भगवान ने बोला वो चीज शास्त्र है। जिसको टेक्निकल भाषा में अपौरुषेय ज्ञान कहा गया है। अपौरुषेय मतलब जो चार दोषों से मुक्त है, तो इसलिए इतना प्रभावशाली है। शास्त्र शस्त्र का काम करता है। किसका काम करता है? शस्त्र का। शास्त्र इसलिए पूरे आप देखेंगे कि शास्त्र के द्वारा हजारों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, क्योंकि ये शस्त्र है। क्यों शस्त्र चाहिए? क्योंकि हमारा आकर्षण इस भौतिक जगत के प्रति है, लगाव है, प्रेम है, जिसके कारण हम कष्ट, एक ही प्रॉब्लम है लाइफ में। क्यों हमारा हम दुखी हैं, क्यों कष्ट है, क्यों बार बार हम विचलित होते हैं, टेंशन आता है, चिंताएं होती है, एक ही चीज है कि हम भगवान के अलावा सारी चीजों से अपना मन, हृदय, चित्त आदि को हमने लगा के रखा है। इसी कारण से है। हाँ, यदि इससे हम उसको हटा देते हैं तो शाश्वत सुख है। हमने पकड़ के रखा है, दुख का आलिंगन, कष्टों का आलिंगन हमने किया है। उस दुख ने, कष्ट ने हमारा आलिंगन नहीं किया, हमने आलिंगन किया। अष्टावक्र मुनि जब जनक महाराज की सभा में थे, तो उस समय अष्टावक्र मुनि को जब पूछा माया के बारे में, माया क्या है, जैसे लोग कहते नहीं नहीं हम माया में है, माया के संसार में है, क्या करेंगे, हम तो टाइम नहीं निकाल सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवद गीता नहीं पढ़ते, पढ़ नहीं सकते, कृष्ण कथा को नहीं सुनेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम क्या है, माया में है, माया के जगत में है। उनको लगता है शादी करना, बच्चे आदि ले होना, ये सब माया है। नहीं, ये सब माया नहीं है। माया क्या है? जो भी चीज आपको कृष्ण का स्मरण नहीं करवाती, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण को भुला देती है, चाहे वो वस्तु हो, घर हो, कार हो, मोबाइल हो, बच्चे हो, पत्नी हो, ऑफिस हो, या कोई टेलीविजन हो, जो कृष्ण का स्मरण आपको करने नहीं देती, वो चीज हमारे लिए माया है। माया का सरल मीनिंग है, जो चीज कृष्ण को भुला दे लाइफ से, वो माया है। तो क्यों ऐसी चीज का आलिंगन करना है? और वो चीज क्या कभी सुख दे सकती है? नहीं, वो तो हमारा भ्रम है कि मुझे सुख देगी, सुखी हो जाऊंगा एक दिन, एक दिन सुखी हो जाऊंगा, ये आकांक्षा, ये भूल के उस गधे के समान सोचना है जिस गधे के ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया था, और गधे के आग के सामने एक ऐसा लकड़ का डंडा टांगा और इधर गाजर हरी घास लटका दी, और गधा आगे चलते चलते सोच रहा है कि अभी मुझे आगे अभी मिलने ही वाली है गाजर, मिलने ही वाला है हरा घास। उस मूर्ख गधे को पता नहीं है कि अरे मूर्ख, जो मिलने वाला है वो तुम्हारे ऊपर ही टंगा हुआ है, जितना मर्जी चलो वो तुमसे आगे ही रहेगा। तो ये जगत की हमारी स्थिति वैसी है, एक दिन होगा सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चीज को जानना, समझना अति आवश्यक है। जिसके पास भी ये मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का देह है, वो व्यक्ति को आवश्यक है जानना। तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, है कि नहीं? आप भाग्यशाली बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन भाग्यशाली है? सब भाग्यशाली है। तो आप सब लोग बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि आपका जो संपर्क है वो किससे हुआ है? भगवान। कृष्ण से ही। थोड़ा सा आगे आ सकते हैं और आगे ही ध्यान दीजिए आप। जब आप आगे आना है तो कहाँ ध्यान देना है? आगे ही। तो शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को ये अत्यावश्यक है कि ये समझना कि ये मनुष्य का शरीर बहुत अधिक दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं, आपको लगता है दुर्लभ है? तो शास्त्र या जो साधु हैं, संत हैं, महात्माएं हैं, उनसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये मनुष्य शरीर बहुत अधिक दुर्लभ है। और ऐसी दुर्लभ वस्तु का हमें क्या करना चाहिए? एक तो महत्व समझना चाहिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण ये शरीर है और क्यों मुझे ये दिया गया है, और वास्तव में दिया गया है सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन इस भौतिक जगत का सुख प्राप्ति के लिए नहीं। शास्त्र कहते हैं तपो देव्यम पुत्र कायन सत्व हाँ ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए दिया है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? उस इंद्र के भांति हमारी स्थिति किसके समान है? इंद्र के समान। वो मग्न है भौतिक सुख के लिए, वो सोच नहीं सकता कि इससे भी परे सुख है। अभी कोई सुअर आपके इस गले में घूम रहा है और बहुत अच्छा हलवा बना लो और जाओ सुअर के पीछे प्लेट लेके भागो, मिस्टर सुअर मिस्टर पिग रुको 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 आप ये हलवा खाओ, लोग आपको पागल कहेंगे। हलवा आप घी में बनाया है, अच्छे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए आपने, बिल्कुल कलर वैनिला फ्लेवर आदि डाल दिया और आप भाग रहे, प्लीज खाओ खाओ। वो सुअर कहेगा क्या गंदगी लेके घूम रहे हो मेरे पीछे, क्या कहेगा कहाँ से गंद लाके आए, कहाँ गंद लेके घूम रहे हो। लेकिन वहां कोई छोटा सा बच्चा मल त्याग कर रहा हो तो ये सुअर भाग के जाके तुरंत खाएगा, उसको क्या टेस्ट। तो वैसी स्थिति हमारी है, इस भौतिक जगत का सुख है जिसके पीछे हम लालायित है, मग्न है, आकर्षित है, वो सुअर की भांति है। इसलिए शास्त्र कहते हैं उत्तिष्ठ जागृतः वरान निबोधतः, वेदांत सूत्र आदि कहते कि उत्तिष्ठ जागृत उठो जग जाओ, क्योंकि आपके पास क्या है अभी? मनुष्य का शरीर है। पशु के शरीर में ये सब नहीं समझ सकते। मनुष्य के पास, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भगवान ने सारे शरीर बनाने के बाद, सारे जीवों को बनाने के बाद मनुष्य का देह बनाया, बाकी सबके शरीरों को बनाने के बाद भगवान संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि ये सारे जीव पशु आदि तो मग्न है केवल भौतिक कार्यों में, लेकिन मनुष्य का जब उन्होंने शरीर बनाया तब देखा कि ये शरीर योग्य है, ये शरीर मुझे समझ सकता है, इसके पास वो उन्नत बुद्धि है जिसके द्वारा उन्नत प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए भगवान ये बॉडी हमें देते। तो शास्त्र कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म, क्या है मनुष्य जीवन? दुर्लभ है। लेकिन उसको हम एक पशु के भांति गवा देते हैं तो हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली अभागा व्यक्ति कोई नहीं है। तो ये जीवन हाँ ये कष्टों से निकलने का माध्यम है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिरता है तो कुएं से उसको बाहर निकलना है। कुएं में क्या होता है? एक दरवाजा है बाहर निकलने के लिए, विंडो है, खिड़की है, जिससे वो बाहर निकल सकता है। लेकिन वो क्या करता है, कुआं गोल होता है ना कुआं, तो वो ऐसे हाथ लगाते 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 आता है और जब दरवाजा आ जाता है तब उसको खुजली आ जाती है, हाथ को ऐसे ऐसे करके दरवाजे से आगे निकल जाता है, फिर हाथ लगाता है। इसको कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कहाँ जाकर सोना, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, और माँ के छोटे से कितने इंच साइज का पेट है उसमें जाके सोना, पुनर्जन्म जिसे कहते, किसने कहा है? ये तो मूर्खता है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद, इतना कष्ट उठाने के बाद फिर से उसी कष्ट के लिए तैयारी करना, क्योंकि कोई व्यक्ति है ऐसा जो माँ के गर्भ से हंसते हुए आ रहा है, तो बहुत सारे बैग लेकर निकला है बाहर, कुछ हम लेके आए, मॉल से आप निकलते हो खाली हाथ अंदर जाते हो लेकिन आते समय जेब खाली करके बैग भर भर के लाते हो, है कि नहीं? लेकिन माँ के गर्भ से हम निकलते हैं तो कुछ लेके निकलते हैं क्या बाहर? नहीं। कैसे निकलते हैं? रोते हुए। डॉक्टर कहता है कि बच्चा रोया नहीं तो वो अननेचुरल है, नेचुरल नहीं, स्वाभाविक नहीं है। कहते ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, बच्चा रोया नहीं इसका मतलब ये गूंगा है, बहरा है, कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चे में। बच्चे ने क्या होना चाहिए? जन्म लेते ही रोना चाहिए। तो मतलब डॉक्टर भी सिखा रहा है कि जगत में जो भी आएगा उसको रोना ही पड़ेगा, शुरुआत में रोना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और मृत्यु के समय तो रोना ही रोना है। चाहे हमारा संबंधी मरता है तो हमें रोना पड़ता है, हम मरते तो उनको रोना पड़ता है, हम कौन चाहता है? नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे ये जीवन केवल रोने के लिए नहीं मिला, किसके लिए मिला है? हंसने के लिए। किस लिए मिला है? हाँ, जो सुखी है वही तो हंसता है। हाँ, जो दुखी है, हाँ, जिसके चेहरे में 12 बजे है, हमसे कहते हैं ना आजकल इसके चेहरे में 12 बज गए हैं। हाँ, मतलब क्या है? बहुत टेंशन में है, बहुत दुख में है, बहुत विपदा में है। तो भगवान ने ये शरीर आदि हमें सुख प्राप्त करने के लिए दिया है, लेकिन वो आध्यात्मिक सुख है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इसलिए हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, बेटे थे, छोटे से 5 साल के। क्या नाम था उनका? प्रहलाद। प्रहलाद इतना छोटा सा बच्चा लेकिन इतना नॉलेजेबल, इतना ज्ञानवान। 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाता है अपने गुरुकुल में, तो स्कूल में जब लंच ब्रेक होता है, भोजन करने के लिए जब छुट्टी होती है, तो वो बच्चा कहता है, हाँ क्या कहता है? सारे बच्चों को कहता है, क्यों खेल कूद में अपना जीवन गवा रहे हो मूर्ख बच्चों? हे आसुरों के पुत्रों, क्यों समय गवा रहे हो? आओ, मैं बैठा हूं, आओ बैठो, और हम किसकी चर्चा करेंगे? कृष्ण की। ऐसे थे, पावरफुल थे। एक अध्याय आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें वो स्कूल के लंच ब्रेक में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, प्रवचन, उसको भागवतम के सप्तम स्कंद में हम पढ़ते हैं, जिसमें पहले लाइन कहते हैं, कौमारम आचरतः प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। ऐसा वो कहते हैं कि कौमारम आचरतः प्राज्ञो, अरे मित्रों, व्यक्ति को 5 साल की आयु से ही भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी आयु से? 5। और हमारे घर वाले क्या कहते हैं? 50। जब दांत प्रसाद को चबा नहीं सकते, कान में भगवत कथा जा नहीं सकती, है कि नहीं, हाथ कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, जीभ कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकती, कृष्ण कथा को बैठने का सामर्थ्य नहीं हमारे शरीर में, कहा जाए कि चलो गोवर्धन की परिक्रमा करने चल नहीं सकते, तब हम कहते वो समय ना सही है भजन करने का। क्या है ये सब? जो भगवत गीता है ये सब, ये क्या सारा अपना तरुण जवानी यवन छोड़ दिया? ये बुढ़ापे का काम आप ही कर रहे हैं। हम कई बार ट्रेन से इधर उधर ट्रैवल करते हैं, लोगों को जैसे लाल वस्त्र दिखते हैं और नौजवान है, वो यही प्रश्न पूछते हैं, क्या ये बुढ़ापे का काम आप ही कर रहे हैं? हाँ, तो हम कहते हैं आप बूढ़े हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति पूछता है एक्चुअली, आप क्या कर रहे हो बुढ़ापे में? उसको ये करना चाहिए? नहीं, इम्पॉसिबल। जैसे मैंने उस दिन अपने लेक्चर में कहा था टेम्पल में, हम एक व्यक्ति से मिलने गए थे भगवद गीता के लिए, हाँ, तो अभी 4-5 दिन पहले इस मथुरा रोड पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, उसका ओनर, उसका अपॉइंटमेंट लिया, रात को हम पहुंचे 7:30 के आसपास उसके ऑफिस में, वो था ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था, उसको देखते ही लग रहा था कि सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है ये, हमने देखने मात्र से अनुभव हो रहा था, और वास्तव में बाद में जब बातें की तब पता चला, बल्कि इतने सारे वर्कर, इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा ऑफिस, सब कुछ, गाड़ियां, सब कुछ, देखते ही पहचान गए कि इससे ज्यादा दुखी व्यक्ति नहीं है। जब हम गए ऑफिस में तो देखा कि अभी बात कैसे करें इससे, तो लोग थोड़ा सोचते हैं कि कोई साधु आ गए इस कपड़े पहन के, तो पैसे मांगने आ गए होंगे, दान मांगने आ गए होंगे ना, लोगों को लगता है इनको कुछ काम धंधा है नहीं, किसी से भी दान मांगते रहते, पैसे मांगते रहते। तो गए, तो वहां गए तो एक दिन बैठा हुआ था ऐसा बिल्कुल दुखी चेहरा करके। हमने सोचा अभी ये भगवत गीता लेगा नहीं लेगा, लेकिन इससे बात करनी होगी। कैसे बात शुरू करें? तो ऐसे ही भगवत गीता पकड़ा दी, पहले हाथ में ही दे दी भगवत गीता। तो मैंने कहा बात करने का एक मौका है, कुछ ना कुछ करके बात शुरू कर दी जाए। तो भगवत गीता दी और कहते हैं हाँ 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 मैं जानता हूँ भगवत गीता को और मैं इसको रखूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब पढ़ूंगा। और उसकी आयु, उसको कहता है कि अभी बहुत मैं बिजी हूँ और मेरे बच्चे वगैरह सब हर एक का फैक्ट्री है, विदेशों में रहते और अकेला बचा था है बस, फिर भी फैक्ट्री चला रहा है किसके लिए उसको भी पता नहीं, धन का तो कोई कमी नहीं है। और वो कहे, मैंने कहा बताइए आपका आयु क्या है, उम्र कितनी है? कहते 68 साल का हूँ, 68। और वो कह रहा है कि मैं बूढ़ा होऊंगा ना तब एक भगवत गीता पढ़ूंगा। मैंने तो हम तो हाँ चकित हो गए। तो मतलब व्यक्ति सोचता है कि ये बुढ़ापे के लिए है, बल्कि हम बूढ़े हो गए हैं। बुढ़ापे, बूढ़ा व्यक्ति का मतलब क्या है, कौन बूढ़ा है? हाँ, बूढ़ा वो नहीं है जिसके बाल सफेद हो गए, बूढ़ा वो नहीं है हाँ जिसके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे। हर एक व्यक्ति बूढ़ा है, चाहे वो माँ के गर्भ से एक दिन हो गया जन्म लिया हुआ बच्चा या 90 साल का व्यक्ति, वो दोनों क्या है, बूढ़े हैं। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की व्याख्या क्या है कि जो भी मृत्यु के नजदीक है वो बूढ़ा है, और जिसकी कभी गारंटी नहीं है कब मरने वाला है उसको क्या कहा गया है, बूढ़ा। कोई कह सकता है कि मैं माँ के गर्भ से आगे जन्म लिया एक हफ्ता और मैं मरूंगा नहीं, हाँ ऐसे हो सकता नहीं। बूढ़े व्यक्ति का डेफिनेशन व्याख्या है कि जो कभी भी मर सकता है उसको बूढ़ा कहा गया। तो हम सब लोग यहाँ बैठे हम सब क्या है, बूढ़े हैं। तो हम सोचते कि ये बुढ़ापे का काम है, ये अभी क्यों करना है, लेकिन व्यक्ति को जानना चाहिए कि अभी मुझ में बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है, हाँ मेरी आंखें देख सकती है, बोल सकती है, चल सकती है, सेवा कर सकती है, अभी इसका यूज करना चाहिए। और कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आप किसी के बर्थडे में जाओ और क्या लेके जाओ, सूखा हुआ फूल। क्या लेके जा रहे हो बर्थडे में, सूखा पूरा ड्राई हो गया पूरा गुलाब लेके जा रहे हो। आपकी बहुत मैं खुश हूँ आपके लिए गिफ्ट, बेचारा क्या कहेगा, रोएगा, फेंक देगा, निराश हो जाएगा। तो वैसे भगवान आप बहुत अच्छे, लेकिन बुढ़ापे के समय भगवान बूढ़ा शरीर मीन्स क्या है, सूखा हुआ फूल जो कामी ने अभी सबने धुतकार दिया है। बहुत कठिन शब्द है, मतलब सब जगह से निकाला गया अभी कुछ नहीं। से मैंने कई स्थानों में घूमता हूँ तो कई विलेजेस में गया था लास्ट ईयर, उड़ीसा महाराष्ट्र आदि, एक एक महीना रहा था 15 दिन। तो मैंने देखा कई ऐसे बूढ़े लोग हैं हाँ जो बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ कुछ नहीं, घर में अभी परेशान रहते। तो चलो पूरे दिन कहाँ रहेंगे जाकर, मंदिर में नहीं। पहले ही हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है। ये मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए दिया है, बाकी कुछ करने के लिए दिया ही नहीं है। शास्त्र ये कहते, इतना स्ट्रॉन्ग वार्निंग है शास्त्रों का, ये शरीर मिला है केवल भगवान की सेवा करने के लिए, भगवत भक्ति करने के लिए, जानने के लिए कि मेरा असली कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, और ये बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा है। जैसे आप कार में बैठे हो और कार में आप कहां जा रहे हो, वृंदावन, तो आपका मेन गोल क्या है, वृंदावन जाने के लिए आप निकले हो, बाकी बीच में बाथरूम के लिए रुक गए, ढाबे में कुछ खाने के लिए रुक गए, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन हम रुक गए ढाबे में, ढाबा ही वहां तक ही वही सब कुछ मानने लगते हैं, वही असली कार्य है खान पान आदि। तो हम सोचते हैं कि ये बाकी सारी जिम्मेदारियां हैं, वास्तव में एक ही जिम्मेदारी के लिए हम बने हैं और वो है भगवान के धाम वापस जाने के लिए। बाकी जिम्मेदारियां सो कॉल्ड जिम्मेदारियां हैं, हाँ वो जिम्मेदारियां हमें तो डुबाने वाली हैं। जब आप भगवान का भक्त बनने का प्रयास करते हो तो बाकी जिम्मेदारियां सरल हो जाती हैं। क्या हो जाती है, सरल। शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति हाँ, जैसे हम श्लोक गाते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम या परमानंद माधव। तो भगवान का स्मरण करने मात्र से हाँ व्यक्ति जो कठिन कार्य है वो सरल हो जाता है, और भगवान का स्मरण न करने मात्र से सरल कार्य भी कठिन हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। तो एक मेव जिम्मेदारी यही है, क्योंकि जिम्मेदारियों का अंत नहीं है लाइफ में। भगवान विष्णु के पास जब नारद जी थे तो भगवान विष्णु ने नारद ने कहा कि भगवान आप इतने सारे लोग सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, सबको बुलाओ ना। उन्होंने कहा नारद तुमको फ्री विल है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम जिसको भी लेके आओ ना सीधा वैकुंठ में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भजन करे या ना करे, योग्य हो या ना हो, मैं ये तुम्हें दे रहा हूं, स्वतंत्रता दे रहा हूं। नारद ने कहा वाह, अभी जाता हूं पकड़ के लाता हूं। आ गए इधर मॉडल बंद में, आ गए मॉरल बंद, क्या है मॉरल वन या वन मॉरल वन बंद है, खोलिए नहीं खोलिए, बंद मत करिए। हमने हमारे शेड्यूल में उसको मॉरल वन लिखा हुआ है, हाँ वृंदावन है ना, तो इसे मॉरल वन ये बंद मत कीजिए। जीवन बंद हो गया, ऑलरेडी बंद है जीवन। हाँ तो जब नारद को कहा तो नारद ने गाये मॉरल वन में आ गए, और वहां कैलाश नाम के व्यक्ति थे। कौन सा आपका नाम तो नहीं ना किसी का कैलाश अच्छा है नहीं है कैलाश का, हम ये कर रहे ओपन कर रहे पूरा उसका कैरेक्टर चरित्र अभी। तो ऐसा जो कैलाश था आ गए, कैलाश कैलाश चलो कहाँ चलो भगवान के धाम। कैलाश कहता है नारद जी बहुत इच्छा है भगवान के पास जाने की, लेकिन अभी ना जिम्मेदारी बहुत है, अभी ना मुक्त नहीं हो सकता। अभी क्या हुआ देखो, मेरी माँ अकेली है, और देखो अभी मेरी पढ़ाई वगैरह करा, पढ़ाई जैसे खत्म करूंगा ना नारद सीधा आपके साथ वैकुंठ आके रहूंगा। अभी नारद ने कहा ठीक है बेटा आता हूँ फिर से, क्योंकि साधु पीछा नहीं छोड़ते आपको SMS आता है क्या, सबको फोन आता है क्या इसका मतलब आप बुक्ड हो गए हो, अटक गए हो, चाहे आपको नंबर ही बदलना पड़ेगा तभी आप छुट्टी ले सकते हो, नहीं तो हमारे ये भक्तगण आपको छोड़ेंगे नहीं, फोन करेंगे SMS करेंगे, संडे प्रोग्राम है ये है फेस्टिवल्स है वृंदावन जाना है। तो ये कैलाश ने कहा कि बस अभी थोड़ा पढ़ाई खत्म करता हूँ उसके बाद। तो नारद पहुंचे पढ़ाई के बाद, नारद देखो अभी भी पढ़ाई खत्म की है, जॉब लगी, और माँ कह रही है अभी शादी करनी है, शादी हो जाए ना हाँ तो बस उसके बाद वो बस माँ को खुश करना है, क्योंकि माँ का हृदय को हाँ उसके प्रति अपराध करते हैं तो उचित नहीं। बस उसके बाद नारद में सीधा वैकुंठ आऊंगा, क्योंकि हर एक को मरने के बाद तो नरक जाना है या वैकुंठ, तो पहले ही अच्छा है, क्यों इस संसार में कष्ट उठाते रहो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो नारद फिर आ गए, नारद के कहा देखो अभी शादी तो हुआ था, चार बच्चे हो गए, अरे पाप लगेगा, बच्चों को संभालो नहीं, उनको पढ़ाओ नहीं, उनको लिखाओ नहीं, हाँ तो अभी अभी नहीं नारद आप थोड़ा आराम से आइए, हाँ मुझे भी आराम से जीने दीजिए। व्यक्ति को लगता है कि ये भक्ति आदि करना जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करना है, घर में कोलाहल मच जाता है, महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है, लोग सोचते कि नहीं, लेकिन उनको पता नहीं भगवत भक्ति से ही सुख शांति आ सकती है। तो फिर नारद गए, तो नारद का कार्य ही यही है, ना का मतलब है नार, या नार का मतलब है नारायण, और द का मतलब है देने वाले, जिनका कार्य ही नारायण कृष्ण भगवान को सब जीवों को देते हैं, वो उनका सामर्थ्य है। भागवतम में जितने जितने महान महान भक्तों का वर्णन आया है, प्रहलाद है ध्रुव आदि है ना, हमने सुना ना, सबके गुरु कौन थे नारद। तो जितने बड़े बड़े भक्त उन्होंने बनाए, किसी और ने नहीं बनाए, नारद। तो नारद का काम ही है बस भ्रमण करना, इसलिए प्रभुपाद उनको इंग्लिश में स्पेसमैन कहते थे कि उनको कोई वीजा की आवश्यकता नहीं, टिकट की आवश्यकता नहीं, कहां भी पहुंच जाते हैं। कंस के घर में भी जाएंगे, हिरण्यकश्यप के वहां भी, भक्तों के वहां भी जाएंगे, द्वारका जाएंगे, मथुरा वृंदावन सब जगह, फ्री मैन, उनकी जैसे सुखी जीवन किसका है कि नहीं? कौन बंधन में रहना चाहता है? कोई चाहता है कि आप आपके से बंधन में रहना? नहीं, हम सब फ्री बर्ड, मतलब मुक्त पक्षी के समान, पंछी के समान हम उड़ना चाहते, लाइफ ऐसा जीना चाहते, इसलिए तो हर कोई स्वतंत्र वो नहीं चाहता, चार दीवारों में बंधना नहीं चाहता, है ना। हर एक व्यक्ति सोचता मेरा अपना लाइफ है, ये माता पिता क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं। कई बार बच्चों को लगता है मेरा अपना स्वतंत्र जीवन है, अलग होना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जब ये नारद आए तो उन्होंने कहा कि बच्चे हैं अभी, फिर उसके बाद नारद आए तो उन्होंने कहा देखो अभी बच्चों का पढ़ाई लिखाई तो सब हो गया, शादी वगैरह हो गई, और ये लोग ना इनको कुछ पता ही नहीं, घर का केयर ही नहीं करते, चले जाते बस दिन भर जाते, पत्नी आदि को लेकर मॉल में जाते, फिल्म देखने जाते, घर का सारा ध्यान कौन रखेगा। हाँ, इधर इसलिए नारद अभी नहीं, अभी जब ये लोग थोड़े जानकार हो जाएंगे, सुजान हो जाएंगे, तब मैं आऊंगा। कौन कह रहे हैं? मिस्टर कैलाश, कैलाश प्रभु जी कह रहे हैं। अभी प्रभु जी बहुत बिजी है कैलाश जी। नारद ने कहा ठीक है। तो नारद वापस आते हैं बहुत दिनों के बाद, तो नारद देखते हैं कि अभी हाँ कैलाश तो है नहीं घर में, लेकिन एक कुत्ता जोर जोर से भौं भौं कर रहा था नारद के ऊपर। नारद ने तुरंत पहचान लिया। नारद ने कहा कैलाश, क्या कहा उस कुत्ते को? कैलाश। कहते हाँ सही पहचाना आपने, मैं वही कैलाश हूं। पुनर्जन्म का मतलब है जिस घर में जिस वस्तु से हम आसक्त होते हैं, बहुत अधिक लगाव रुचि आदि रखते हैं, उसी ही घर में हमें जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का जीवन नहीं, कॉकरोच, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, ये सब चीजें बहुत कठिन है, इसलिए ये नहीं चाहिए हमें। तो नारद ने कहा, नारद ने त्रिकाल यज्ञ है, नारद ने कहा अरे तुम यहां क्या, अभी 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 चलो, अरे अरे कैलाश चलो अभी चलो। कहते नारद नहीं, ये लोग घर का दरवाजा खोल के जाते हैं, जिसको मैंने इतने मेहनत से बनाया है, खुला छोड़ के जाते हैं, इनको कुछ है नहीं टेंशन। उन्होंने कहा अरे बाद में आ जाओ नारद प्लीज, अभी थोड़े दिन, अभी कुत्ते का जीवन कितने साल का है? 20 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे जो भी है। कहते बस थोड़े दिन और रुको। हाँ, तो फिर नारद आते हैं बाद में आते थे, देखे अरे कुत्ता भी नहीं है कहाँ। नारद वो घर के पिछवाड़े से चलते हुए आ रहे थे, थोड़ा खेती भी था, तो वहां देखा कि वहां खेती में क्या है, सांप। तो नारद को टाइम नहीं लगा पहचानने के लिए, कहा कैलाश, कैलाश क्या हो गया आपके साथ? कैलाश कहता है नारद आप बोलते नहीं हो, आप सही समय में आ जाते। नारद अभी चलो, वो कहते नहीं नहीं देखो ना, ये लोग सारा धन, हाँ ये खेती आदि है, इसमें एलिफेंट्स आ जाते, लोग चोरी करते, कुछ करते, तो मैं क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ, सांप होता है उस एरिया में, हम सावधानी से जाते या अवॉइड करते वो स्थान, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा ये सारे लोग, ये जो मेरे बच्चे है, बहू आदि है, सब मस्ती में है, इनको कोई केयर ही नहीं है, इतना मैंने खेती उनके लिए रखा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ठीक से, तो इसको इसका फसल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। नारद ने कहा यह ऐसा नहीं मानेगा। हाँ, तो नारद सोचने लगा कि भगवान ने कहा कि फ्री स्वतंत्रता है, किसी भी जीव को लेके आ जाओ वैकुंठ में, वो भजन करे या ना करे, वो परमानेंटली रह सकता है, सुखी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ है, आलिंगन करके बैठे हैं माया का, भौतिक चीजों का, नहीं जाना चाहते, बस ये फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं यहां से। तो नारद ने कहा ये ऐसा नहीं जाएगा, इनको थोड़ा अभी शिक्षा की आवश्यकता है। नारद ने कहा, नारद चिल्लाए साफ साफ साफ, घर वाले सारे बच्चे आ गए डंडा लेकर, वही पुत्र आ गए और जो श्रीया आ गई देखने के लिए कि सांप क्या है, और जो पुत्र आदि थे डंडा ले लेके मार रहे बाप के ऊपर, पिता के ऊपर। कैलाश चिल्ला रहे अरे मूर्खो, आपको पता नहीं मैं ही हूं आपका पिता। तो नारद कहते अभी चलो, तो कहने का तात्पर्य क्या है, यही है हमारे दुखों का कारण हमारी आसक्ति है इस संसार से, प्रेम अटैचमेंट जिसको कहते हैं। तो इसलिए हम वास्तव में नहीं जाना चाहते, हमने पकड़ के रखा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने क्या किया है, माया को पकड़ा है। जैसे मैंने अष्टावक्र मुनि के बारे में कहा था, तो वो गए, उन्होंने कहा माया क्या है या माया को, माया से कैसे छूटा जाए। तो अष्टावक्र मुनि जनक महाराज की सभा में से अपने आसन में बैठे थे, वहां से दौड़ के चले जाते बाहर, और जैसे बाहर गए उन्होंने क्या किया कि दरवाजे में ही एक पेड़ था, पेड़ का आलिंगन किया, और आलिंगन किया और जोर जोर से चिल्ला रहे थे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। अभी सारे राजा जनक महाराज मंत्री आदि सब क्या कह रहे, अरे यार ये तो मूर्ख ही लग रहा है, आलिंगन किसने किया उस पेड़ का, उसी ने, और ऐसे पकड़ के रख रहा है और चिल्ला रहा है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, क्या करो हाथ छोड़ दो ना ऐसे, इसलिए छूट जाएगा। अभी हमारी स्थिति यही है, हम क्यों दुखी हैं, क्यों कष्ट में हैं, क्योंकि हमने कष्टों का दुखों का आलिंगन किया है। सबसे बड़ा कष्ट तो ये शरीर है, हम हमेशा दूसरों को, इसके कारण मेरे जीवन में समस्या उत्पन्न हो गई है ना, हम हर समय दूसरों को दोष देते हैं, ये व्यक्ति मेरे जीवन में कष्ट का कारण है, नहीं हम ही स्वयं है। सबसे पहला कष्टमय चीज ये देह है, ये शरीर है, इसलिए शास्त्र कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर क्या है, व्याधियों का मंदिर है, मंदिर में कष्टों का स्थान है। तो ये शरीर ही सुख नहीं दे सकता, तो शरीर से संबंधित चीजें आपको सुख दे सकती है क्या, इजी अंडरस्टैंडिंग, सरलता से समझे, जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, मान रहे हैं, जिसकी इतना धुलाई कर रहे हैं, क्लीनलीनेस कर रहे हैं, उसका इतना टेक केयर कर रहे हैं, उसको कपड़े पहना रहे हैं, ठंड आ रही है तो स्वेटर आदि है, उसके लिए नाना प्रकार की क्रीम्स है, लोशंस है। अभी आप देखो कितना ट्रबल में लाइफ है, वैदिक कल्चर में एक ही साबुन हुआ करता था पूरे शरीर के लिए, अभी फेस का वाश, बालों का वाश, सबके लिए अलग अलग, कितने खर्चे बढ़ा दे, उसके लिए कितना कष्ट करना पड़ता है व्यक्ति को, पाँव के तलों के लिए अलग, उंगलियों के लिए अलग, नाखून के लिए अलग, बालों के लिए अलग, फेस के लिए अलग, हाँ मतलब क्या है, दुख खुद ही हम ये कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये केवल बुद्धिमान व्यक्ति को ही समझना चाहिए, तो ये शरीर केवल दुख दे रहा देगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जान लो कि मैं ये जगत के लिए नहीं बना हूं, मैं भगवत सेवा के लिए बना हूं, मेरी असली जिम्मेदारी है भगवान की सेवा करना, भगवान को जानना और इस भौतिक संसार से बाहर निकलना, ये असली जिम्मेदारी है, और इसलिए ये मनुष्य शरीर है, इसी कारण से दुर्लभ है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेतम प्रयाति भवा प्रयान भवाद्धि न तरेत स आत्मा। तो भगवान उद्धव को भागवतम के 12वें स्कंद में कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इस सुलभ है, लेकिन इसका लाभ जो नहीं उठाता वो आत्महा, मतलब वो आत्मा हत्यारा है, अपनी जान बुझ के आत्महत्या कर रहा है, जितना होने के बावजूद भी लाभ नहीं उठा रहा है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, एक महान आचार्य थे जिनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर, वो कहते हैं हरे हरे विफले जन्म गोवाइनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। हे हरि हरि हे कृष्णा, मैंने वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जीवन गवा दिया, क्यों गवा दिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं मैं, इतना अच्छा बॉडी मुझे मिला उसमें मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, उनके नामों का उच्चारण नहीं किया, उनकी कृष्ण कथा आदि को नहीं सुना, कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं। हाँ जानिया सुनिया विष खाइनु, जान बुझ के मैंने क्या खाया, विष, ये संसार विषमय है, जानबूझ के हम विष खा रहे हैं, इसलिए व्यक्ति को बड़े गंभीर होना चाहिए अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका संपर्क भगवत कथा से, भगवान नाम से, भगवत कीर्तन से आया है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग गंभीरता से लीजिए भगवत भक्ति को मृत्यु आने से पहले। बुद्धिमान वो व्यक्ति है घर में आग लगने से पहले घर के पास कुआं खोद के रखता है, और मूर्ख वो व्यक्ति है घर आग लग के जल रहा है और तब वो खोद रहा है कुआं, अभी कुआं खोदूंगा, ये नहीं। मतलब ये शरीर खत्म होने से पहले ही तैयारी करो भक्ति करने का, भगवत भजन, भगवत सेवा। ये नहीं कि इसमें इतने रोग, इतनी बीमारियां लग जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब सोचता हूं अभी माला कहाँ है, माला उठाता हूं, भगवत गीता कहाँ है, तब नहीं। आग लग गया और कहते हो अभी कुआं खोदने का सामान कहाँ है। तो ये अंधा नगरी चौपट राजा ऐसे कहते हैं ना, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र क्या है, हमारी आंखें खोलती है, इसलिए गीता भागवत आदि को हमें पढ़ना चाहिए, विशेष रूप से भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए, एक श्लोक, चाहे समझ में आए या ना जाए, आ ना जाए। भगवान कहते यदि कोई व्यक्ति शुरुआत करता है समझ में आए या ना आए, भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं। बुद्धि देने वाले कौन है, कृष्ण है। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि आप पहला कदम उठाओ, क्या उठाओ, पहला कदम। जब भगवान कहते कि कोई व्यक्ति मेरी ओर एक कदम उठाता है, मैं उसकी ओर 100 कदम आता हूं। एक कदम उठाना पड़ेगा। द्रौपदी का वस्त्रहरण दिल्ली में हो रहा था, हस्तिनापुर में, और कृष्ण कहां रह रहे थे, द्वारका। कितने कदम आए होंगे वो यहां उसका वस्त्र हरण से रक्षा करने के लिए, और उसने क्या कदम उठाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों को पकड़ना है चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी मुझे भगवान के नामों का जप करना है, ये भावना होनी चाहिए। जब उसकी विपदा में उसने देखा कि मेरे इतने 5 पति हैं जो इतने बलशाली हैं, जो शिवजी को हराने का सामर्थ्य रखते हैं, अर्जुन भीम के समान बलशाली कौन नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर के समान धर्म का प्रतीक नहीं है, नकुल सहदेव आदि, उनसे रक्षा की याचना कर रहे फिर भी कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है। हाँ, फाइनली वो क्या करती है, हे कृष्णा, हे यादव, हे द्वारकाधीश, उनके नामों का उच्चारण करती। जैसे कृष्ण ने देखा, अरे द्रौपदी ने कदम उठाया है मेरी ओर, भगवान नाम का जप करने लगे हैं, तो कृष्ण व रुक्मिणी के साथ अपने महल में भोजन कर रहे थे, प्लेट को साइड को छोड़ दिया, नहीं अभी भोजन लेने का समय नहीं है, हाँ मुझे दौड़ना पड़ेगा। कृष्ण दौड़ने लगे और क्या किया, कैसे रक्षा की, अनलिमिटेड साड़ी दी उन्होंने। तो यही है कि हमें पहला कदम उठाना होगा। भगवान फोर्सफुली हमसे प्रेम नहीं करवाएंगे, अभी किससे प्रेम, थोड़ी जबरदस्ती करवा सकते हो आप, करवा सकते हो क्या, नहीं, स्वाभाविक। तो भगवान को जबरदस्ती करनी है तो उनको टाइम नहीं लगेगा, इतने कष्ट देंगे, एक भूकंप कर देंगे, कुछ तो कर देंगे, तो बस उनको टाइम नहीं है जबरदस्ती करने के लिए। कृष्ण को केवल ये, कृष्ण को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उनकी प्रकृति करेगी सारा, मटेरियल नेचर, तो फिर लोग भागेंगे। तो इसलिए वो होने से पहले स्वाभाविक शरणागत हो जाए, और शरणागति का पहला लक्षण है भगवान के नामों का आश्रय लेना। जो वाल्मीकि थे कैसे वो भक्त बने, कैसे बने भक्त, इतने आसुरी प्रवृत्ति के थे, भगवान का नाम। पांडव आदि भगवान से प्रेम क्यों करने लगे, भगवान नाम का आश्रय लिया उन्होंने। जितने भी उदाहरण शास्त्रों में हमें आते हैं, गजेंद्र हाथी के ऊपर जब मगरमच्छ ने पानी में उसका पांव पकड़ा था, कैसे रक्षा हो पाई, भगवान का नाम। उस हाथी होने, एक हाथी पशु होकर भी जिसने क्या किया, देखा गजेंद्र हाथी अपने पूरे परिवार के साथ जैसे आप लोग जाते हैं ना, गर्मी आ गए, चलते अभी ऊटी मनाली और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, तो ये हाथी भी, गजेंद्र हाथी भी अपने पूरे परिवार को लेकर समर वेकेशन ले गया। वहां बच्चे इतने पूरे 40-50 हाथी, इतना बड़ा परिवार था, सबको ले गया सरोवर में स्नान करने। शास्त्र कहते वो जो गजेंद्र हाथी है, गज इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ है राजा, गज मीन्स हाथी, सारे हाथियों का राजा था उस वन में, इतना बलशाली कि वो उससे सिंह शेर आदि भी भागते थे, डरते थे। ऐसा बलशाली हाथी जब स्नान करने के लिए गया जलाशय सरोवर में, हाँ, सबके ऊपर अपने सूंड से पानी डाल रहा है, वो बच्चे भी डाल रहे हैं, मस्ती कर रहा था, उसी समय क्या हुआ, मगरमच्छ आकर उस हाथी का पांव पकड़ लेता है खाने के लिए। इतना बलवान हाथी, हाँ, मगरमच्छ का खींच रहा है, मगरमच्छ को बहुत पावर होती है पानी में, शक्ति होती है, बलवान होता है, और ये चिल्ला रहा है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, सगे संबंधी हैं, कोई भी उसको नहीं बचा पाते, ये सारे भाग रहे थे दूर, सारे हाथी पानी के बाहर जाकर देख रहे, बस ऐसे देख रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा। एक हजार साल या एक साल के लिए वो हाथी और उनके बीच में युद्ध हो रहा था, मगरमच्छ अंदर को खींच रहा है और एक बाहर खींच रहा है। तो पूर्व जन्म के सुकृति के कारण एक हाथी भी क्या करता है, भगवान का स्मरण हो आ जाता है। एक पशु होने के बावजूद भी वो भगवत भक्ति करता है, उच्चारण करता है भगवान नाम का, और हम मनुष्य होने के बावजूद भी हमारी जीभ इतनी मोटी है। जैसे मैं किसी से मिल रहा था तो उनका एक बहुत बड़ा बच्चा हो गया, वो बोल नहीं रहा है, मैंने कहा क्या हो गया, उसकी जीभ ना मोटी है, जीभ मोटी होती है ना जीवा, तो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, तो हमारी जीभ भी वैसी हो गई है, भगवान नाम में ये चलती नहीं है, बाकी चीजें बोलने के लिए बोलो, कालिया देने के लिए बोलो या कुछ, कैसे चलेगी, धार तलवार के समान चलेगी। हाँ, लेकिन भगवान का नाम बस जीवा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो रुक जाती है। तो ये पशु होने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि अरे अभी सारे विपदाओं से मेरी रक्षा नहीं हो सकती, तो उनको पूर्व सुकृति के कारण उनको स्मरण आया गया कृष्ण का, और उनको स्मरण आया तो उन्होंने क्या किया, देखा कि सामने कमल का फूल है, कमल के फूल को अपने सूंड से उठाया और आकाश में फेंका, और उन्होंने एक भगवत प्रार्थना का उच्चारण किया, नारायणम अखिल गुरु भगवन नमस्ते, हे नारायण सारे जगत के गुरु, आपको मैं प्रणाम करता हूं, ये भावना। तो जैसे कमल का फूल आकाश में फेंका उस हाथी ने, भगवान उसको ग्रहण करते हैं और भगवान दौड़ पड़ते हैं, भगवान अपने जो गरुड़ है उसका आश्रय नहीं लेते, गरुड़ को छोड़ देते। कृष्ण देखते कि अरे ये गरुड़ भी इतनी तेजी से नहीं जा सकता, उतनी तेजी से वो भागते, भगवान स्वयं आते, गरुड़ उनके पीछे आता है बाद में, और आते ही उस ग्राह, उस मगरमच्छ को मार डालते हैं अपने चक्र के द्वारा, और सुंदर एक ये राजा का शरीर उनको मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन केवल भगवत भक्ति के लिए मिला है, ये असली रिस्पॉन्सिबिलिटी, असली जिम्मेदारी यही है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना। हम यदि ये संभव नहीं हो रहा है तो हम केवल अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जीवन को गवा रहे हैं। हाँ, तो ये समझ हमें कैसे आती है, दो चीजों से, साधु शास्त्र कृपाय यदि जीव कृष्ण उन्मुख है, दो चीजों की कृपा या दो चीजों के संपर्क में व्यक्ति आता है तभी यह समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। एक है साधु और दूसरा है शास्त्र। साधु शास्त्र कृपाय यदि जीव कृष्ण उन्मुख है, दो चीजों से बहुत, इसलिए जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब हम भक्तों के संग में आते, संपर्क में आते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सिद्धि मीन्स परफेक्शन, इससे परफेक्शन, इससे जीवन की पूर्णता समझ सकते हैं, अन्यथा असंभव है। अभी टेलीविजन क्या हमें सिखाएगा, न्यूज़पेपर क्या हमें सिखाएगा, सिनेमा क्या हमें सिखाएगा, वो तो दिखने में अच्छा लगता है, उन सबके पर्सनल लाइफ में जाके देखो कितना हॉरिबल है, कितना गंदा है लाइफ। बाहरी रूप से हम वो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, लेकिन उनका जीवन चरित्र कितना गंदा है उसका कभी हम सोचते हैं? उनका चरित्र आदि को देखेंगे तो उनसे गंध कहा नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को हम अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहते हैं, हाँ, जो नरक की ओर जा रहे हैं, और हम भी उनको आदर्श बनाकर नरक की ओर नरक गामी होना चाहते हैं। तो इसलिए गंभीर होना चाहिए,